अब वो सिनेरियो है यहाँ आयत 274 में सूद के बारे में। जरा सा इसको समझिए, कुरान में ये मौजू आगे भी आने वाला है, हम वहां भी बात करेंगे। लेकिन अल्लज़ीना युन्फिकून अमवालहुम बिललैली वन्नहारी, यानी इस आयत में 274 में माल खर्च करने की मुमकिना सूरतें, सुबह में खर्च करो, शाम में खर्च करो, कभी जाहिर करके दो, कभी छुपाओ, एज पर नीड। रात है तो सुबह का इंतजार ना करो, सुबह है तो रात का ना करो, अकेले में कर सकते हो तब इंतजार ना करो कि जरा कवरेज होगी तो दूंगी, और सबके बीच में नेकी का मौका था तो फिर ये ना को नहीं सब चले जाएंगे तो दूं। इस आयत 74 का तो ये मतलब है, व्हेन एवर इस दे सको दे दो। लेकिन आयत 275 कुरान की शदीद तरीन आयात में से एक आयत है, अल्लज़ीना याकुलूनर रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं नहीं खड़े हो सकेंगे मगर जैसे खड़ा होता है वो शख्स जिसको खपती बना दिया शैतान ने छूकर। ये क्यों? क्योंकि वो ये कहा करते थे कि भाई यानी तिजारत भी तो सूद ही जैसी चीज़ है, हालांकि अल्लाह ने हलाल किया है तिजारत को और हराम किया है सूद को। यानी देखिए, लफ्ज़ हराम और हलाल मौजूद है सूद के लिए, 40 से ज़ायद अहादीस मौजूद हैं इस मौजू पर। कुरान ने पाक में 6-7 आयात है मुख्तलिफ मुकामात पे जिससे ये मजमून हमें समझ आता है। इसलिए फमन जा हो मोइज़ा तुम्हें रबी ही, जिसको रब की नसीहत पहुंच गई, फनतहा, रुक जाए, कल तक नहीं पता था, नहीं रुका, आज पता चल गया, अब क्या, फलहू मा सलो, अब उसके लिए वो जो गुजर गया पिछले को अल्लाह माफ करके अगली चीज देगा, वह अमरुहु इल्लल्लाह, उसका मैटर अल्लाह पर डाल दो, अल्लाह उसके साथ जो भी करे। हाँ लेकिन ये सारी बातें सुन के वमन आदा, जिसने दोहराया, दोहराना कहते हैं ना, ईद का लफ्ज़ भी इसी से है, ये आदा करना भी है, यानी विल रिपीट इट, तो फरमाए फौलाए का असहाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, वो हमेशा आग में रहने वाले हैं। अब यहाँ इतनी सी चीज़ के बाद आप देखिए अल्लाह सुबहान तआला ने क्या बता दिया कि माल खर्च करना जिसको सदका खैरात है वो तो किसी खास वक्त और हालात से रिलेटेड नहीं है, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना किसी भी मुल्क की खुशहाली है। अमीर अपनी ज़रूरत से ज़ायद दूसरों को दे दें, गरीब को जितना मिल गया वो उस पर रिलैक्स हो जाए। और मैं अक्सर इस पर एक मिसाल देती हूँ कि अल्लाह ने कुछ लोगों को उनकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, कुछ की ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास आपकी इनकम $1,000 है, आपके अखराजात $500 में बड़े अच्छे पूरे होते हैं, अब ये जो एक्स्ट्रा $500 है इसका क्या करें आप? एक मर्द की मिसाल लीजिए, उसको देखना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द मेरे भाई, मेरे हमसाए, मेरी गली इर्द गिर्द उनके पास क्या आ रहा है। अब उस सोसाइटी में $500 इज एनफ। अब वो देखता है कि मेरा एक भाई भी बेचारा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसको सिर्फ पूरे महीने में कोशिश के बाद $400 मिलते हैं। अब ये इसके पास जो 500 एक्स्ट्रा थे ना, इसको इसमें से 100 दे देना चाहिए उसको, ले मेरे भाई तेरे 400 में 100 डल का, तू जाकर इज्जत से गुजारा कर। दूसरे को वो देखता है कि उसके बेचारे के पास तो सिर्फ $300 है, अपने पैसों में 200 उसको दे के, आप समझ गए होंगे कि पैसों को लोगों की ज़रूरियात में पूरा करके अपना घर भी खुशी से चलाए, दूसरों का भी चलाए। अल्लाह ताला कभी कभी खुद डायरेक्ट दे देते, कभी नहीं देते। तो ये है मुनसिफाना तकसीम माल की, इस्लाम ने यही सिखाई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर तक पहुँचते हुए मुसलमानों के पास इतनी खुशहाली आ चुकी थी कि कोई गरीब नहीं था। जब लोग ज़कात का माल इकट्ठा करके लाए तो इनसे कहा कि ये किसको दें? कहा जाके बूढ़ गरीबों को दे दो। कहा आपके मुल्क में गरीबी कोई नहीं। बेवाओं को दे दो। कहा उनके पास बहुत है। कैदियों को दे दो। कहा सबके पास है, कोई नहीं ले रहा। कहा अच्छा जाओ इसका दाना खरीद कर पहाड़ों पर डाल दो, परिंदे खाएंगे। दैट इज़ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। आज पूरी दुनिया, आप ये मत सोचिए कि आप पाकिस्तान, इंडिया या बरेसगीर पाक हो, इनमें तो गुर्बत है। इस वक्त नॉर्वे जैसा लैविश कंट्री, वन ऑफ दी कह लीजिए कि बेस्ट कंट्री जो लाइफ स्टाइल के हिसाब से, वहाँ भी एक ही बात है, हर वक्त गुर्बत, महंगाई महंगाई हो रही। यूके को देख लीजिए, प्रोटेस्ट होते, फ्रांस में पिछले चंद माह पहले पूरी एजिटेशन थी, बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं वो एजिटेशन करती हैं। वजह क्या है? इंसाफ नहीं है। आज भी अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को इस्लाम की मेथडोलॉजीज दे दी जाएं तो वो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगी, लेकिन चूँकि सारा कुछ चल रहा है सूद पे, पूरी दुनिया इस वक्त इंटरेस्ट बेस्ड है। आज की पूरी दुनिया, जिसमें आप थर्ड वर्ल्ड कह लीजिए, सुपर पावर्स को कह लीजिए, ईस्ट से वेस्ट कह लीजिए, उसमें जो इस वक्त बेबरकती है उसकी वजह अल्लाह ने इस आयत 276 में दे दी, यम हकुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदकात। अल्लाह सूद को ख़त्म करता है, सूद वाला पैसा ख़त्म हो जाएगा। उलमा कहते हैं 40 साल के अंदर वो इंडस्ट्री ज़रूर कोलैप कर जाएगी जिसमें सूद का पानी लगे, जैसे रस्ट होता है, जंग लग जाए तो वो चीज़ ज़्यादा देर नहीं चलती। हाँ, युरबिस सदकात, सदके को अल्लाह बढ़ाता है, एक खजूर एक पहाड़ बन जाएगी, बछेड़े को अल्लाह इतना बड़ा बना देगा। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फार नसीम। यहाँ देखिए कफ्फार नसीम किसको कहा गया है, ना शुक्रा गुनागार, जो सूद का लेन देन करता है उसका तस्करा है। तो क्या पता चला कि सूद में बज़ाहर तो बढ़ोतरी नज़र आती है लेकिन आम तौर पे देखिए तो अंदर से वो बैंक करप्सी है। अल्लाह से जंग की बातें हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इस मौजू पे इस चीज़ को फाजनु भी हर बे मिनल्ला से भी रिलेट किया। तो क्या पता चला कि तिजारत और सूद नफ्सियाती, मुआशी, समाजी, सियासी और अखलाकी असरात की वजह से दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तिजारत मुफीद है, मर्द सुबह घर से निकलते हैं, सारा दिन खूब मेहनत करते हैं, रात को घर में आते हैं, घर वालों के साथ अच्छे ताल्लुक आते हैं, बीवी भी इंतज़ार कर रही होती है, बच्चे भी इंतज़ार करते हैं कि बाप है। इसके बरक्स आप देखिए कि जो सूद पे माल लगा कर घरों में बैठते हैं तो अक्सर वो फारिग होते हैं, सारा दिन घर में झगड़े होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सूदी निज़ाम मईशत के लिए, किसी मुआशरे के लिए हलाकत है। और अल्लाह के रसूल के साथ जंग की बात है, अल्लाह से जंग की बात है। इस्लाम ने इतना खूबसूरत गैर सूदी निज़ाम मुतारफ कराया, और जो शराकत और कर्ज़ हसना के असूल पे माय फायज़ है। आप देखिए कि जब कोई चीज़ सिर्फ कागज़ों में होती है ना तो आप कहते हैं ये तो कहने की बातें हैं, इस्लाम ने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। चारों खुलफाए राशिदीन, फिर उसके बाद आगे चलते जाए तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, और आगे चलते जाए तो 1000 साल नबी सल्लम से लेकर 10 सदियाँ तक पूरी दुनिया में अमन था, सुकून था, क्योंकि इस्लाम का निज़ाम नाफिज था। जब से ये सूदी वाला निज़ाम आया, और सूद क्या है, ब्लैक मनी है, अस्वत काले रंग को कहते हैं, तो क्या पता चला कि दुनिया में कभी अमन चैन नहीं आएगा जब तक इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम होंगे। और आज तो वेस्ट ने कहना शुरू कर दिया, हम सूद की शरह कम कर रहे हैं, आपको फिगर एंड फैक्ट्स मेरे से ज़्यादा मालूम होंगे, हमने इस सोच से नहीं देखना, हमें तो इस्लाम ने जो बात कह दी उसको लेना है। तो क्या पता चला कि गैर सूदी निज़ाम माशरे में इक्तसादी तवाज़न कायम रखने का ज़ामिन है, यानी गैर सूदी निज़ाम माशरे में बैलेंस लाता है, इससे दुनिया में सबको उनके हकूक़ मिलेंगे। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि जितना ज़्यादा आपको अल्लाह ताला की बात पे यकीन आएगा, अल्लाह ताला आपके साथ उतना अच्छा मामला करेंगे। जहाँ सूद का मौजू पूरा होता है उस पर दोबारा ईमान की बात करके कहा आयत 277 में, इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वअक़ामुस्सलाता वअतुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर आप इस सारे में से गौर करें ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आज भी एक रेड़ी पे किन्नू बेचने वाला रात को पुरसकून सोता होगा कि मेरे सारे किन्नू बिके, आई हैव नो लाइबिलिटीज। और एक सेठ करोड़पति अरबपति बंदा रात को नींद नहीं आती कि वो गोलियां खाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, गवर्नमेंट ने ये कह दिया, वो कर दिया। तो जिंदगी में टेंशन आती ही तब है जब आप अल्लाह की नाफरमानी के साथ कोई मामला करते हैं। इसलिए यहाँ एक किस्म की तजदीद ईमान की बात की गई। तो क्या पता चला कि नमाज हो या रोज़ा हो या कारोबार हो, सारे मामलात को जितना आप अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक करते जाएंगे, अल्लाह की इताअत पे कायम होंगे, उतना आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती जाएगी। और आप सिर्फ इबादात के साथ दुनिया में मामलात को नहीं ले सकते, साथ आपको अमली चीज़ों को देखना होगा। नमाज और रोज़ा अल्लाह के साथ है लेकिन अमली एतबार से बदतरीन गुनाह सूद है। उलमा का इस पर इत्तफाक है कि हकूकुल्ला में सबसे बड़ा जो जुल्म है वो शिर्क है, और इंसानी मामला हकूकुल इबाद में, डीलिंग्स में सबसे बड़ा मामला सूद का है। इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने दावत दी आयत 278 से 280 को अगर आप देखें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, आप देखिए, आप अगर बाद में सुकून से इन आयतों पे गौर करें, तर्जमा ही पढ़ लें, और अगर इनकी तफसील सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर के हर सेट में इस पे खुली बात होती है, क्योंकि इस वक्त ये एग्जेजुरेशन से हटते हुए रियलिटी बेस्ड निज़ाम को देखें पूरी दुनिया में, और आप ये बात प्रिडिक्ट कर देती हूँ आज से 20, 25, 30 सालों के बाद एटलीस्ट, या आगे कमोवेश पूरा वेस्ट सूद को ख़त्म कर देगा। अल्लाह ने वो फैक्ट्स एंड फिगर्स उनको दिखा दिए कि हमारा बनाया हुआ इज़्म ठीक नहीं है, अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम है। जैसे आप देखिए, कम्युनिज्म था, सोशलिज्म था, अपनी मौत आप मर गए। तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही स्लोगन है जी, इंटरेस्ट के बगैर कारोबार नहीं होते, इंटरेस्ट के बगैर घर नहीं बनते। इंटरेस्ट ये सिर्फ चंद सालों की अब बात रह गई है, वो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं, तो लिहाजा इसको छोड़ दिया गया। और इसके साथ ही फिर कहा कि अगर कोई गरीब है तो किसी ने तुमसे कर्ज लिया हुआ है तो तुम उसकी मदद करो। तीसरी चीज़ अब आगे क्या है, कर्ज देना, लोन दो लेकिन इंटरेस्ट फ्री दे दो, और अगर बेचारा तुम्हें पैसे वापस नहीं कर सकता तो तुम उसको माफ़ कर दो ताकि उससे उसका भला हो जाए। इस्लाम नहीं चाहता कि किसी को दुख दें, ला दरर वला दरार की कैफियत है। और आप देखिए कि फिर 281 में दोबारा आखिरत की बात है। ये मौजू शुरू भी हुआ था तो आखिरत से के मौजू से, कि ला बयुन फी ही वला खुल्ला, और एंड पर ये जो आयत है इसके बारे में अक्सर उलमा का इत्तफाक है ये कि तरतीब के अतबार से ये आखिरी आयत थी जो नबी सल्लम पर नाजिल हुई थी, कि वत्तकु यौमन तुरजऊ नफी ही इलल्लाह, और अल्लाह से उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। तुम तुवफ्फा कुल्लु नफ्से मा कसबत, फिर हर नफ्स को पूरा पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया। वहुम ला युज़लमून, यानी आखरत की जवाबदेही का एहसास इंसान के आमाल की इसलाह का जरिया बनता है। तो जब हम आखरत को सामने रखेंगे तो अल्लाह की रहमत से मामला दुरुस्त होंगे। और याद रखिए कि शरीयत के अहकाम की मुखालफत से बचने वाला दुनिया में भी पुरसकून होगा और आखिरत में भी बेहतर होगा, और अगर इसकी मुखालफत की तो वो सब के साथ है। इसके बाद देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आयत 282, कुरान की तवील तरीन आयत, लॉन्गेस्ट वर्स लफ्ज़ों के एतबार से कह लीजिए वो 282 है। ना ये नमाज के बारे में, ना रोज़े हज ज़कात के बारे में, ये किसके बारे में, आयते दैन कहते हैं इसको, उधार के हवाले से कुरानी मालूमात है। इससे पता चलता है कि इस्लाम एक दूसरे के माल के बारे में कितना संजीदा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन से बात शुरू होती है और वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम पे पूरी होती है। इसके बीच में हमें कुछ शराइत दी गई हैं कि मुसलमान एक दूसरे से उधार ले भी सकता है, दे भी सकता है। माली मामलात को अदल और इंसाफ के मुताबिक जब किया जाएगा तो शर्त क्या है कि तहरीर हो, यानी दो शरायतें किसी को उधार देने की बड़ी बड़ी। नंबर एक ये है, गवाह मुकर्रर करो जिसमें डॉक्यूमेंटेशन भी आ जाएगी, लिख लो पढ़ लो। और दूसरी बात है कि वापस कब दोगे। आप अपने भाई को भी कर्ज देते हैं या भाई बहन को कर्ज देते हैं ना, तो ये दो बातें लिखनी पड़ेंगी कि आप कब वापस करेंगे और गवाह कौन है। हम अमूमन ऐसी छोटी छोटी बातों को लिखते नहीं हैं जिसकी वजह से बाद में फिर मुश्किल होती है। तो उधार के हवाले से कुरानी हिदायात आपको इनायात में मिलती हैं। और फिर अगली चीज़ प्लच, जिसको आप और मैं, यानी आखिरी चीज़ इस ज़िमन में क्या है कि सूद आपने लेना नहीं, सदका खैरात कोई देता नहीं है या लेने वाला नहीं, तो उधार ले लो। उधार कोई आप पे एतबार नहीं करता तो फिर रहन दे दो, गिरवी देना जिसको कहते हैं, प्लजिंग कहते हैं। वइन कुंतुम अला सफरिन से बात शुरू हो के फरीहान व मकबूजा, ये दो लफ्ज इसके अंदर आप नोट कर लें 283 में, तो ये भी जायज़ है। आप घर के कागज़ देकर किसी को पैसे लेते हैं, बाद में पैसे देकर चीज़ वापस ले लेते हैं, ये भी जायज़ है। इस सब की डिटेल्स हैं, आप फिक्की की किताबों में पढ़ लीजिए, कोई एक स्कूल ऑफ थॉट है, कोई दूसरा है। कुरान का मौजू जो है ये फिक्र नहीं है, ये तो बस आपको ये एहसास दिलाता है कि वल्लाहु बिमा तअमलूना अलीम, तुम जो करते हो अल्लाह ताला उसको देख रहे हैं। इसी के ज़िमन में गवाही की भी बात आई कि गवाही को छुपाना अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करते। इन सारे मामलात में तहरीर और गवाह ऐसे हों जो इख्तलाफ की सूरत में हकीकत को सही तौर पर बयान कर सकें, यानी कोई किसी की तरफ झुकाव ना हो। और उसके बाद फिर सूरत का खात्मा है, आयत 284 से ऑनवर्ड 286 आखिरी रुकू है, अर्श का खजाना। अल्लाह के नबी को मेराज के सफ़र में ये तोहफ़ा दिया गया। और आप ज़रा सा सूरत बकरा की तकमील पे महसूस कीजिए कि अल्लाह अपनी बड़ाई की बात करते हैं कि लिल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, यानी अल्लाह ओन्स एवरीथिंग, अल्लाह हर चीज़ का मालिक है। क्यों दूसरों से मरूब होते हो जब वो इतना कुछ है? तुम कुछ जाहिर करो या तुम्हारे दिलों में आए, उसका हिसाब होगा। जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के सहाबा तो परेशान हो गए, इतना घबरा गए कि फिर अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी कि फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, तो क्या पता चला कि अल्लाह के यहाँ हर अमल का मुहासबा होगा। दिल में आई हुई बातों पर अल्लाह पकड़ नहीं करेगा जब तक कि उस पर अमल ना किया जाए। तो अर्शे इलाही के ये ख़जाने आमन अर रसूल से लेके, बड़ी खूबसूरत दुआ है इसमें, आप और मैं भी दुआ के तौर पे मांगें कि आज के दौर के उम्मते मुस्लिमा के लिए ये चीज़ें अर्शे इलाही से जो आई, उसमें एक दुआ क्या थी कि रब्बना ला तो आखिसना इन नसीना ओ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अललज़ीना मिन कबलिना। आप देखिए कि सभी को आती होगी ये दुआ। इसको उर्दू तर्जमे के साथ जहन में रखकर दिन रात में जब मौका मिले पढ़ लें। रात को सोते वक्त ये दुआएं पढ़िए कि अल्लाह हमारी कमी बेशियां दूर कर दे, हम पे वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत नहीं है, हमें माफ़ कर दे, तेरी बख्शिश चाहिए, तेरा रहम चाहिए, और हमें काफिर कौम पे गलबा अता फरमा। तो गोया के बड़े खूबसूरत पैगाम पर सूरत पूरी होती है कि अल्लाह ताला किसी पर उसकी कुव्वत और ताकत से ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं डालता। अल्लाह ताला बंदे की ताकत के मुताबिक ज़िम्मेदारी डालता है। फिर अगली बात पता चलती है कि आमाल की ज़िम्मेदारी हर एक के ऊपर है और ज़िम्मेदारी पर अमल दरामत होना होगा। आपको जो भी नेमत मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है, इसकी कदर कीजिए। और इसी तरह से इस आयत के अंदर जो अल्लाह ताला ने कबूलियत की बात की है, इससे पता चलता है कि बंदा दिल से कोई भी दुआ मांगता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं। इसलिए दुआओं से कभी गाफिल ना हुआ करें, ये वो इबादत है जो हर जगह हो सकती है। इसके लिए किबला रुख होने की भी ज़रूरत नहीं, इसके लिए बावजू होने की भी ज़रूरत नहीं। और शायर ने कहा कि अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर। यानी जब एक बंदा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला इसकी मदद फरमाते हैं। तो यहाँ आपने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तवील तरीन सूरत पूरी की, अल्लाह आपको ये इल्म मुबारक करे।